بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو توریت پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا اور یدی کافروں کو سمے دینے کے سمبندھ میں آپ کے پالنہار کی پرمپرا پہلے سے نردھارت نہ ہوتی تو نشچت روپ سے اسی سنسار میں ان کے بیچ فیصلہ کر دیا جاتا، اور نسندیہ وہ لوگ گہرے سندیہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور نشچت روپ سے آپ کا پالنہار ان کے کرموں کا بدلہ انہیں پورن روپ سے پردان کرے گا، اور نسندیہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے پورنتہ اوگت ہے۔ تو ہے پیغمبر، جیسا کہ آپ کو آدیش دیا گیا ہے، آپ اور آپ کے ساتھ ایشور کی اور آنے والے لوگ پرتیرودھ کریں اور ادنڈتا نہ کریں، کہ نسندیہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو ایشور اسے دیکھنے والا ہے، اور اتیاچاریوں پر بھروسہ نہ کرو کہ نرک کی آگ تمہیں اپنی چپیٹ میں لے لے گی، اور یہ جان لو کہ ایشور کے اترکت تمہارا کوئی سہائک نہیں ہے اور کسی کی اور سے تمہاری سہایتا نہیں کی جائے گی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے پرساروں کو شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے pastoday.com/hi، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 00989035065492۔ دوستوں، آج منگلوار ہے، مہر کی 19 اور اکتوبر کی 11 تاریخ ہے، ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی 14 تاریخ ہے۔ آج کی ہمارے سبھا کے کارکنوں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، اس کے بعد آپ کارکرم راجنیتک چرچا سنیں گے، اس کے بعد آپ کی سیوا میں پیش کیا جائے گا ایکتا سپتاہ کے موقع پر ایک وشیش کارکرم، اور ہماری سبھا کا انتم کارکرم ہوگا قرآنی قصے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ تو دوستو، کارکرم کے انوسار اب آپ ریڈیو ہندی تہران سے راشٹریہ اور انتراشٹریہ سماچار روش زیدی سے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے سماچاروں کا مکھ سارانش۔ ایران کا بڑا کارنامہ، 2025 میں ہوا میں اڑنے لگیں گے سودیشی یاتری ویمان۔ دنگوں کے پیچھے موجود دشمنوں کو آئی آر جی سی کے کمانڈر کی چیتاونی، انہی یوواؤں کے ساتھ تمہاری تلاش میں آئیں گے۔ روس کے میزائل حملے کے بعد یوکرین کے راشٹرپتی اسرائیل پر بھڑکے۔ سماج وادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگھ یادو کے انتم درشن کے لیے عمدہ جن سیلاب، راجکیہ سمان کے ساتھ ہوا انتم سنسکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں، اب وستار سے آپ کی سیوا میں سماچار پیش ہیں۔ اسلامی گڑراج ایران کے ناگرک اڑین وبھاگ نے گھوشنا کی ہے کہ گھریلو استر پر سودیش نرمت یاتری ویمان اگلے 3 ورشوں کے بھیتر آسمان پر اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق ایران کے ناگرک اڑین وبھاگ کے پرمکھ محمدی بخش نے سوموار کو ایک کارکرم کے دوران گھوشنا کی کہ ورش 2025 میں دنیا کو آسمان میں اڑتے ہوئے سودیش نرمت ایران کے جہاز دکھائی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا پریواہن ادھیوگ اور رکشا منترالے اس مہتوپورن پریوجنا کے کاریانویان میں بھرپور سہیوگ کر رہا ہے۔ محمدی بخش نے کہا کہ پوری طرح ایران نرمت ان ویمانوں میں 72 سے 150 سیٹیں ہوں گی۔ ایران کے ناگرک اڑین وبھاگ کے پرمکھ نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگلے 36 مہینوں کے بھیتر ایرانی نرمت یاتری ویمان دیش کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ اس بیچ ایران میں بہت جلد سودیش نرمت 12 سے 17 سیٹوں والی ہوا میں اڑنے والی ٹیکسیاں بھی سامنے آئیں گی۔ محمدی بخش نے کہا کہ دیش کو کم سے کم 550 یاتری ویمانوں کی ضرورت ہے۔ اس آوشکتا کو پورا کرنے کے لیے نئے یا پرانے ویمان لائے جانے چاہیے۔ IRGC के कमांडर ने ऐसे सभी दुश्मनों को चेतावनी दी है जो ईरान में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सिपाही पासदाराने इनकलाब इस्लामी IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सोमवार को शहीद खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान हालिया दिनों में ईरान में होने वाले दंगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि दंगों और मीडिया युद्ध की योजना वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के थिंक टैंकों द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस शैतानी योजना को लागू करने के लिए यूरोपीय देशों की राजधानियों और रियाज को केंद्र बनाया गया। जनरल सलामी ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों के हथियार से जब दुश्मन अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल हो गया तो उसने अब दंगों का सहारा लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अपने संबोधन में ईरान में दंगा भड़काने वाले देशों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक दिन इन्हीं युवाओं के साथ तुम्हारी तलाश में आएंगे कि जिन्होंने तुमसे धोखा खाया है और भटक गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी युवा जल्दी अपनी मातृभूमि की ओर लौट आएंगे क्योंकि तुम्हारी सच्चाई इनके सामने आ चुकी होगी। जनरल सलामी ने कहा कि हम उसी दिन इन युवाओं के साथ तुमसे बदला लेने आएंगे। ब्रिटेन की हस्तक्षेपपूर्ण कार्रवाई के कारण तेहरान में तैनात ब्रिटिश राजदूत को तीसरी बार ईरानी विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सप्ताह के दौरान तेहरान में तैनात ब्रिटेन के राजदूत को ईरान के विदेश मंत्रालय में तीसरी बार तलब किया गया है। ब्रिटेन के राजदूत साइमन शिरक्लिफ को विदेश मंत्रालय तलब करके बताया गया कि जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान अपने अधिकार को सुरक्षित मानता है। बता दें कि ईरान में हालिया उपद्रव के बहाने इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ब्रिटेन ने सोमवार को ईरान की नैतिक पुलिस तथा देश के सुरक्षा के जिम्मेदारों कुछ अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद तेहरान में तैनात ब्रिटेन के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करके उनसे बता दिया गया कि ब्रिटेन की हस्तक्षेपपूर्ण कार्रवाई की ईरान कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस्लामी गणराज ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ ने कहा है कि इस्लामी क्रांति के दुश्मन बड़े पैमाने पर ईरानी राष्ट्र के खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने मंगलवार को तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ कमांड एंड स्टाफ द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान की इस्लामी क्रांति के दुश्मन हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि झूठ और अफवाह का सहारा लेकर वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जनरल मूसवी ने पवित्र प्रतिरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की समीक्षा पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि क्रांति के दुश्मन अतीत और वर्तमान के बारे में असत और झूठा प्रचार करके भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन अपने झूठे अभियान को अंजाम देने के लिए पानी की तरह न केवल पैसा बहा रहे हैं बल्कि वो ऐसे सभी साधनों का उपयोग कर रहा है जो उसके पास मौजूद है। सेना के कमांडर जनरल मूसवी ने कहा कि भविष्य में ठोस कदम उठाने के लिए अतीत को ठीक से समझना होगा और पिछले अनुभवों से सबक लेना होगा। उन्होंने कहा कि एक ओर विचारों और विश्वासों के लुटेरों की कमी नहीं है तो दूसरी ओर दुश्मन से सच और हकीकत सुनने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पर इस सम्मेलन के आयोजन के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए मेजर जनरल मूसवी ने कहा कि युद्ध की कला विज्ञान रचनात्मकता और साहस और वीरता पर निर्भर करती है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि बहरीन सरकार ने 4 विरोधियों की सजाए मौत का आदेश जारी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और बहरीन सेंटर फॉर राइट्स एंड फ्रीडम ने बहरीन में आले खलीफा शासन की ओर से चार विरोधियों को सजाए मौत का आदेश दिए जाने की खबर दी है। अल जजीरा के अनुसार वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वॉच और बहरीन के अधिकार और स्वतंत्रता के केंद्र ने एक बयान में कहा है कि बहरीन की अदालत ने हाल ही में चार बहरीनी विरोधियों को मौत की सजा सुनाई है। मानव अधिकारों की इन संस्थाओं ने खबर दी है कि सजाए अत्याचारी ट्रॉल्स और हिंसा के अंतर्गत प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति पर आधारित है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स वॉच और बहरीन राइट्स एंड फ्रीडम सेंटर के संयुक्त बयान में अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीय संघ की सरकारों से कहा गया है कि वो मनामा सरकार पर सजाए मौत और अदालतों के उल्लंघनों के को रोकने के लिए दबाव डाले। रूस की सेना ने क्रीमिया के पुल पर हुए भीषण विस्फोट के बाद यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके बाद यूक्रेन के लगभग हर शहर से सायरन बजने की आवाजें सुनाई देने लगीं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को रूस ने यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने एक के बाद एक 83 मिसाइलें दागकर न केवल यूक्रेन बल्कि पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन में ये रूस का सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेन का दावा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सफल हुए, लेकिन रूस का हमला इतना शक्तिशाली था कि अमरीकी डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए रूसी मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने निर्धारित लक्ष्यों पर जाकर लगीं। रूसी मिसाइल हमले में डिफेंस सिस्टम के फेल होने के बाद नाटो सेना के पूर्व कमांडर जनरल जॉर्ज जोलवान ने सोमवार को सुझाव दिया कि यूक्रेन की सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर विचार करना। उन्होंने सीएन से बातचीत करते हुए कहा कि इन हमलों को ये संकेत मिलता है कि यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जाने के बाद भी रूसी सेना अभी भी तोपखाने और हवाई क्षमता के मामले में जंग में भारी पड़ रही है। जनरल जॉर्ज ने कहा कि यूक्रेन को आयरन डोम जैसे हवाई सुरक्षा कवच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना को रूस के हवाई और तोपखाने की ताकत से बचाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये पुतिन की सेना की बड़ी ताकत है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद पुतिन ने चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह के और ज्यादा हमले होंगे। रूस की इस धमकी के बाद G7 देशों की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन की ताजा स्थिति को लेकर मंगलवार को ये देश एक आपात बैठक भी कर रहे हैं। मास्को का कहना है कि हमने यूक्रेन की सैन्य नियंत्रण प्रणाली, संचार और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हालिया हमलों में यूक्रेन की सैन्य नियंत्रण प्रणालियों और ऊर्जा और संचार सुविधाओं को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है जर्मन सेना के पास केवल 2 दिन का ही गोला बारूद बचा है। जर्मन रक्षा उद्योग और संसदीय सूत्रों के अनुसार देश के सशस्त्र बलों के पास केवल 1 या 2 दिन के युद्ध के पर्याप्त गोला बारूद हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दी है कि बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट के जर्मन संस्करण ने संसदीय और रक्षा उद्योग के सूत्रों से हवाला देते हुए बताया है कि जर्मन बुंडेसवेयर के पास केवल 1 या 2 दिन की लड़ाई के लिए पर्याप्त गोला बारूद बचा है। यूक्रेन की राजधानी समेत विभिन्न शहरों पर रूसी युद्धक विमानों और मिसाइलों के हमले में आई तेजी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश के सशस्त्र बलों को मजबूत करने की कसम खाई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हमलों के जवाब में यूक्रेन ने अपने सशस्त्र बलों को और मजबूत करने की कसम खाई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। मंगलवार को उनके पैतृक गांव सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत के पूर्व रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह का सोमवार को निधन हो गया था। वो यूरिन संक्रमण के चलते काफी समय से गुरुग्राम में स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। 1 अक्टूबर से गुरुग्राम अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत हर बड़े छोटे नेता ने शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त होते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लाम फोबिया की जारी योजना के अंतर्गत इस बार अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कट्टरपंथी ज़ायनियों ने पवित्र कुरान की कुछ प्रतियों को आग लगा दी। अल खलील शहर के इस्लामी वक्फ बोर्ड के निदेशक निजाल अल जावरी ने कहा कि कट्टरपंथी ज़ायनियों ने अल खलील शहर के एक पुराने हिस्से में हरम इब्राहिमी के पास कैतून मस्जिद में पवित्र कुरान की कई प्रतियां जला दी। कुछ पश्चिमी देशों के साथ अधिग्रहित क्षेत्रों में भी विभिन्न शक्लों में इस्लामोफोबिया या इस्लाम से जंग का सिलसिला जारी है। वास्तव में इस्लाम का विरोध पश्चिम की नीतियों में से एक है। इस नीति को साकार करने के लिए दुश्मनों ने विभिन्न परिदृश्यों को तैयार और लागू किया है। पिछले 3 सप्ताहों के दौरान ब्रिटेन के राजदूत को ईरान के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। ब्रिटेन के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करके बताया गया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान अपने अधिकार को सुरक्षित मानता है। ईरान में हालिया उपद्रव के बहाने इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ब्रिटेन ने सोमवार को ईरान की नैतिक पुलिस तथा देश के सुरक्षा के जिम्मेदार कुछ अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया। श्रोताओं, भारत में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता को लेकर 17 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, जबकि नतीजे 19 अक्टूबर को आ जाएंगे। कांग्रेस के 2 नेता अर्जुन खड़गे और शशि थरूर चुनावी मैदान में हैं और वे भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के एक पूर्व और कांग्रेस के वर्तमान नेता उदित राज ने कहा है कि वास्तविक डेमोक्रेसी कांग्रेस में है न कि भाजपा में।
ORS जिसको चाहता वही BJP का अध्यक्ष होता है।
इस्लामोफोबिया की जारी योजना के अंतर्गत इस बार अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कट्टरपंथी ज़ायनियों ने पवित्र कुरान की कुछ प्रतियों को आग लगा दी। अल खलील शहर के इस्लामी वक्फ बोर्ड के निदेशक निजाल अल जावरी ने कहा कि कट्टरपंथी ज़ायनियों ने अल खलील शहर के एक पुराने हिस्से में हरम इब्राहिमी के पास कैतून मस्जिद में पवित्र कुरान की कई प्रतियां जला दी। कुछ पश्चिमी देशों के साथ अधिग्रहित क्षेत्रों में भी विभिन्न शक्लों में इस्लामोफोबिया या इस्लाम से जंग का सिलसिला जारी है। वास्तव में इस्लाम का विरोध पश्चिम की नीतियों में से एक है। इस नीति को साकार करने के लिए दुश्मनों ने विभिन्न परिदृश्यों को तैयार और लागू किया है। समीक्षा पेश करें साथी अख्तर अब्बास।
इस्लामोफोबिया की जारी योजना के अंतर्गत इस बार अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कट्टरपंथी ज़ायोनियों ने पवित्र कुरान की कई प्रतियों को आग लगा दी। अल खलील शहर में इस्लामी वक्फ बोर्ड या इस्लामी वक्फ विभाग के निदेशक निजाल अल जाबिरी ने कहा कि कट्टरपंथी ज़ायोनियों ने अल खलील शहर में एक पुराने हिस्से में हरम इब्राहिमी के पास कैतून मस्जिद में पवित्र कुरान की कई प्रतियां जला दी। कुछ पश्चिमी देशों के साथ अतिग्रहित क्षेत्रों में भी विभिन्न शक्लों में इस्लामोफोबिया या इस्लाम से जंग का सिलसिला जारी है। वास्तव में इस्लाम का विरोध पश्चिम की ठोस नीतियों में से है। इस नीति को साकार करने के लिए दुश्मनों ने विभिन्न परिदृश्यों को तैयार और लागू किया है। मुसलमानों पर आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त होने का आरोप लगाना या इस्लामी धर्म पर हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाना, इस्लाम धर्म और इस्लाम के प्रिय पैगंबर के बारे में अपमानजनक चीजें प्रकाशित करना, पवित्र कुरान का अपमान व अनादर करना, इस्लामी शिक्षाओं और संस्कारों का अपमान करना, इस्लाम विरोधी प्रवचनों का प्रचार, कट्टरपंथी हथियारबंद गुटों को इस्लामी रूप देना, उन्हें प्रशिक्षण और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस करना, बड़े स्तर पर मीडिया का दुरुपयोग इस्लामोफोबिया के तरीकों में है जो अक्सर पश्चिमी देशों के अधीन क्षेत्रों में किए जाते हैं। इसके साथ ही युवा पीढ़ी में इस्लाम के आकर्षण को कम करना और इस्लामी मूल्यों व मान्यताओं का अपमान व अनादर करना इस्लामोफोबिया के अन्य तरीके हैं। अतिग्रहित क्षेत्रों में भी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और ज़ायोनी अधिकारियों और ज़ायोनी बस्तियों के निवासियों को इस्लामोफोबिया को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं है। दूसरे शब्दों में कई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अनुसार धर्मों और उनके अनुयायियों का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कानून का अटूट हिस्सा है, लेकिन ज़ायोनी बिना किसी चिंता के इस्लाम, मुसलमानों और पवित्र कुरान का अपमान करते हैं।
पिछले 3 सप्ताहों के दौरान ब्रिटेन के राजदूत को ईरान के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। साथ ही कायम रिज़वी,
पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान ब्रिटेन के राजदूत को तीसरी बार ईरान के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। ब्रिटेन के राजदूत साइमन शेरक्लिफ को विदेश मंत्रालय तलब करके ये बता दिया गया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान अपने अधिकार को सुरक्षित मानता है। ईरान में हालिया उपद्रव के बहाने इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए ब्रिटेन ने सोमवार को ईरान की नैतिक पुलिस तथा देश के सुरक्षा के जिम्मेदार कुछ अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद तेहरान में तैनात ब्रिटेन के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब करके उनसे ये बता दिया गया है कि ब्रिटेन की हस्तक्षेप पूर्ण कार्रवाई की ईरान कड़े शब्दों में निंदा करता है। ब्रिटेन के राजदूत साइमन शेरक्लिफ को इससे पहले 24 सितंबर और उसके बाद 5 अक्टूबर को भी विदेश मंत्रालय बुलाकर ईरान के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप से उनको सूचित करवाया गया था। पश्चिम के उकसावे में देश के भीतर बहके हुए लोगों द्वारा आरंभ किए गए उपद्रव में पश्चिमी देश घी डालने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही ईरान के विरुद्ध नए प्रतिबंध लगाकर अपनी हस्तक्षेपपूर्ण नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। सन 2009 में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले ब्रिटेन ने ईरान में अपने राजदूत साइमन गैस को भेजकर इन चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास किए थे। बाद में चुनाव के आयोजन के बाद होने वाली अशांति में ब्रिटिश दूतावास से संबंधित कुछ तत्वों को ईरान के सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया था। इसी के साथ हस्तक्षेप पूर्ण कार्रवाई के कारण ब्रिटेन के 2 कूटनयिकों को ईरान से निष्कासित कर दिया गया था। इस बार भी ब्रिटेन की सरकार ने हस्तक्षेप पूर्ण नीति अपनाते हुए ईरान में जारी उपद्रव का समर्थन किया है। इसी के साथ ब्रिटेन ने अपने देश में कूटनयिक स्थलों की सुरक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण लंदन में स्थित ईरान के दूतावास पर कई बार हमले किए गए। ईरान के विरुद्ध पश्चिम के हालिया फैसलों के बारे में ब्रिटेन के एक राजनीतिक टीकाकार डेविड मिलर ये लिखते हैं कि सही बात तो यह है कि वे प्रतिबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ईरान में उपद्रव करवाया। दूसरी ओर परमाणु समझौते के विरोधी जो वार्ता में विघ्न डालना चाहते थे, वे इस अवसर का दुरुपयोग करते हुए ईरान को अलग थलग करने के प्रयास में लगे हुए हैं।
श्रोताओं, भारत में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता को लेकर 17 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, जबकि नतीजे 19 अक्टूबर को आ जाएंगे।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अलग अलग राज्यों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। शशि थरूर के नामांकन पत्र वापस नहीं लिए जाने के बाद अब अध्यक्ष पद का मुकाबला इन दोनों के बीच होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे असम की यात्रा पर हैं, जहां वे पीसीसी पदाधिकारियों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। असम के गुवाहाटी में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे। पूर्वोत्तर के कांग्रेस सदस्यों को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका पहला उद्देश्य उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करना है और 50 वर्षों से कम उम्र के लोगों को नियुक्त करके पार्टी में नया खून लाना है, जिसमें महिला, एससी, एसटी और ओबीसी शामिल होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें अपने घर बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने को कहा था। उन्होंने कहा कि लोग मेरे साथ चलें और हम सब मिलकर पार्टी के संगठनित ढांचे को मजबूत बनाने का काम करेंगे। खड़गे ने कहा कि वह ये चुनाव लड़ने के लिए इसलिए सहमत हुए क्योंकि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पार्टी अध्यक्ष पद संभालने को तैयार नहीं था। भाजपा के पूर्व और कांग्रेस के वर्तमान नेता उदित राज ने भाजपा नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस है जहां वास्तव में जनतंत्र है।
चुने जाए या नहीं चुने जाए, जनतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिसकी मर्जी वो आकर के चुनाव लड़े। अभी तक दिग्विजय जी चुनाव लड़ रहे थे, जब सुना नाम की खड़गे जी आ गए हैं तो दिग्विजय जी उनके सम्मान में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए अपना नाम वापिस कर लिया है। वास्तव में सही असली जनतंत्र यही रख रहा है। मोदी और शाह की पार्टी नहीं है कि मुख्यमंत्री को बदल दे एक घंटा पहले किसी को न पता लगे। ORS जिसको चाहता वही बीजेपी का अध्यक्ष होता है। ये पार्टी दूसरी पार्टी असली जनतांत्रिक असली डेमोक्रेटिक पार्टी है।
उधर शशि थरूर भी अपने लिए प्रचार कर रहे हैं और पदाधिकारियों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। शशि थरूर का भी वादा है कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को मौका देंगे। गांधी परिवार के अतिरिक्त कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेता अध्यक्ष पद के लिए खड़गे के समर्थन में हैं। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव जीतना लगभग तय नजर आता है। पिछले चुनावों में निरंतर हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनके समर्थक नेताओं का कहना है कि वे मंझे हुए नेता हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। अब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है कार्यक्रम एकता सप्ताह के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, कार्यक्रम एकता सप्ताह से संबंधित विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ धर्मगुरुओं ने बहुत प्रयास किए हैं। जिन धर्मगुरुओं ने मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के प्रयास किए हैं, उनमें शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों दोनों के ही धर्मगुरु शामिल रहे हैं। वे मुसलमान वरिष्ठ धर्मगुरु जिन्होंने मुसलमानों के बीच एकता के लिए अथक प्रयास किए और इस मार्ग में तरह तरह की परेशानियों का भी सामना किया। उनमें से एक मिस्र के जाने माने धर्मगुरु और पवित्र कुरान के व्याख्याकार शेख महमूद शलतूत भी शामिल हैं। उन्होंने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए कई बड़े काम किए हैं।
वे मिस्र के रहने वाले थे। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उनको मिस्र के अल अजहर विश्वविद्यालय में पढ़ाने का निमंत्रण दिया गया। शेख शलतूत की शिक्षा, उनकी योग्यता और परिश्रम के कारण उनको अल अजहर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। शेख शलतूत का प्रयास यह था कि मुसलमानों के बीच पाए जाने वाले धार्मिक मतभेदों और तासुब को समाप्त किया जाए। वे पवित्र कुरान और पैगंबर इस्लाम के कथनों को सारे इस्लामी पंथों के संयुक्त बिंदु मानते थे।
शेख शलतूत का कहना था कि ईश्वर ने पवित्र कुरान में मतभेद का विरोध किया है, इसीलिए मुसलमानों के बीच भेदभाव सही नहीं है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन है कि इस्लाम में भेदभाव नहीं है। सुन्नी मुसलमानों के इस वरिष्ठ धर्मगुरु का मानना है कि वे धर्मगुरु जो फिक्ह अर्थात इस्लाम शास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको किसी एक पंथ तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उस बात को मानना चाहिए जो पवित्र कुरान और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन से अधिक निकट हो। शेख शलतूत कहते हैं कि वे मतभेद जो मुसलमानों के बीच अलगाव का कारण बनते हैं वे ही बाद में आपसी शत्रुता का रूप धारण कर लेते हैं, इससे दिलों में नफरतें पनपती हैं।
अल अजहर विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में शेख महमूद शलतूत ने मुसलमानों के सारे पंथों को एकजुट करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पैगंबर इस्लाम के शुभ जन्मदिवस के अवसर पर 17 रबीउल अव्वल सन 1378 हिजरी कमरी को एक ऐतिहासिक फतवा जारी किया जिसके अनुसार शिया मुसलमानों की विचारधारा का अनुसरण किया जा सकता है। वे लिखते हैं कि इस्लाम अपने किसी भी अनुयायी को किसी विशेष पंथ के अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं करता बल्कि हर मुसलमान उस पंथ को अपना सकता है जिसकी शिक्षाओं को कुरान और पैगंबर इस्लाम के कथनों की रोशनी में पेश किया गया हो।
शेख महमूद शलतूत कहते हैं कि सुन्नी मुसलमानों के चार प्रमुख पंथों शाफई, हम्बली, मालिकी और हनफी में से किसी का भी मानने वाला इनमें से किसी दूसरे मत को अपना सकता है। शेख शलतूत लिखते हैं कि जाफरी या शिया असना अशरी पंथ को अपनाया जा सकता है और सुन्नी मुसलमानों के चारों पंथों में से किसी भी पंथ का मानने वाला जाफरी पंथ को अपना सकता है। उनका कहना है कि मेरी दृष्टि में ये सारे मत समान हैं और उनमें से किसी एक को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है।
जब शेख शलतूत ने यह फतवा दिया तो उनके बाद उनको डराने और धमकाने के काम किए गए किंतु उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि वे मुसलमानों के बीच एकता के लिए प्रयास करते रहे। शेख शलतूत ने कहा कि अल अजहर विश्वविद्यालय में सुन्नी मुसलमानों के चारों पंथों की शिक्षा के साथ ही जाफरी पंथ या शिया मुसलमानों की धार्मिक बातों को पढ़ाया जाना चाहिए। सुन्नी मुसलमानों के इस महान धर्मगुरु ने केवल यह फतवा ही नहीं दिया बल्कि इस्लामी पंथों को अधिक निकट करने के उद्देश्य से अल अजहर विश्वविद्यालय में फिक्हे मुकारिन की फैकल्टी खुलवाई।
फिक्हे मुकारिन का अर्थ होता है इस्लामी पंथों के धर्मगुरुओं के फतवों को एकत्र करके उनकी समीक्षा करते हुए एक संयुक्त एवं सशक्त कथन को ढूंढना। शेख शलतूत का यह भी मानना था कि मुसलमान धर्मगुरुओं को मतभेदों, तासुब और आंतरिक इच्छाओं के अनुसरण से बचना चाहिए। उनको हर उस बात को स्वीकार करना चाहिए जो मुसलमानों के एकजुट होने का कारण बने। विशेष बात यह है कि सुन्नी मुसलमानों के वरिष्ठ धर्मगुरु शेख शलतूत आशूर अर्थात 10 मुहर्रम को अल अजहर विश्वविद्यालय में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में शोक सभा आयोजित किया करते थे। उन्होंने इस्लामी शिक्षाओं के अध्ययन के लिए शोध एकेडमी की आधारशिला रखी, जिसमें मुसलमानों के सारे पंथों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर इस्लाम से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे।
महान मिस्री धर्मगुरु ने फिलिस्तीन के विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बैतुल मुकद्दस जाकर भाग लिया। विशेष बात यह है कि अन्य कई सुन्नी मुसलमान धर्मगुरुओं के साथ मिलकर उन्होंने बैतुल मुकद्दस में वरिष्ठ शिया धर्मगुरु आयतुल्ला शेख मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गेता के पीछे नमाज पढ़ी। इसके बाद उन्होंने कहा कि कितना अच्छा है कि हमने यहाँ पर एक शिया धर्मगुरु के पीछे एक साथ मिलकर नमाज पढ़ी। वे कहते हैं कि ईश्वर मुसलमानों को एकजुट देखना चाहता है।
दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के उद्देश्य से सुन्नी और शिया दोनों ही मतों के धर्मगुरुओं ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। अभी हमने आपको इस बारे में मिस्र के शेख शलतूत के बारे में विस्तार से बताया। इसी संबंध में हम आपको एक अन्य मुसलमान धर्मगुरु से अवगत करवाने जा रहे हैं जो शिया पंथ के अनुयायी हैं। इनका नाम है इमाम मूसा सद्र।
इस्लामी जगत में मुसलमानों के बीच एकता पैदा करने वालों में इमाम मूसा सद्र बहुत मशहूर हैं। उन्होंने इस मार्ग में ढेरों परेशानियां सहन की है। उनको इस काम से रोकने के लिए बहुत से प्रयास किए गए और अंततः उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद से इमाम मूसा सद्र के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु उनके बारे में जो जानकारी मौजूद है उससे ये बात स्पष्ट है कि मुसलमानों को एकजुट करने के लिए तन मन और धन से प्रयास किए और हर प्रकार की धमकी और चैलेंज का मुकाबला किया।
इमाम मूसा सदर कहा करते थे कि मुसलमानों का कल्याण एकता से ही हासिल होगा। उनका मानना था कि मतभेद हमेशा उस समय आरंभ होते हैं जब दूसरों को अपमानित किया जाता है। ऐसी स्थिति में अलगाव और टकराव पैदा होता है। मूसा सदर की हार्दिक इच्छा ये थी कि पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो जाएं। इस काम के लिए उन्होंने विदेश की बहुत सी यात्राएं की। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर मुसलमानों के बीच एकता के विषय पर उल्लेखनीय भाषण दिए।
इमाम मूसा सद्र कहते हैं कि मुसलमानों के बीच एकता के लिए जहां मुसलमानों से अलग अलग मिलकर बात करनी होगी, वहीं पर मुसलमान देशों के नेताओं से भी भेंटवार्ता जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने उत्तरी यूरोप से दक्षिणी अफ्रीका और मध्य पूर्व एवं दूरस्थ देशों की यात्राएं करके मुसलमानों के बीच एकता के विषय को आगे बढ़ाया। उन्होंने कई भाषाएं सीखी। वे महान सुधारक सैयद जमालुद्दीन असदाबादी के सुधार के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे।
मूसा सदर मानवीय गरिमा को विशेष महत्व देते थे। वे मुसलमानों की समस्याओं का समाधान चाहते थे। मुसलमानों के बीच मतभेदों को लेकर वे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने लिबनान में मजलिसे आला की स्थापना की, जो न केवल शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए लाभदायक रहा बल्कि ये पूरे लिबनान के लिए अच्छा था। उन्होंने लिबनान के भीतर शिया और सुन्नी मुसलमानों को निकट लाने के उद्देश्य से अथक प्रयास किए, जो बहुत हद तक सफल सिद्ध हुए। लिबनान के तत्कालीन मुफ्ती शेख मुहिद्दीन हसन के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। विभिन्न अवसरों और धार्मिक आयोजनों में वे मुफ्ती हसन को निमंत्रित करते और उनके निमंत्रण पर सुन्नी मुसलमानों के जलसों और जुलूसों में भाग भी लेते थे।
इमाम मूसा सद्र ने मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के साथ ही ईश्वरी धर्म के मानने वालों के बीच भी एकता स्थापित करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने लेबनान में मुसलमानों और ईसाइयों को एकजुट करने की भी कोशिशें की है। इसका नतीजा यह निकला कि जहां पर मुसलमानों के सभी पंथों और ईसाइयों के बीच एकता के कारण इमाम मूसा सद्र की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। अब इमाम मूसा सद्र को न केवल शिया मुसलमानों के नेता के रूप में पहचाना जाता था, बल्कि उनको लेबनान में पाए जाने वाले सारे धर्मों के नेता के रूप में जाना जाने लगा। इमाम मूसा सद्र फिलिस्तीन के मुद्दे को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे कि फिलिस्तीन का मामला केवल मुसलमानों से विशेष नहीं है, बल्कि यह समस्त ईश्वरीय धर्मों के मानने वालों से संबंधित है। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
दोस्तों, अभी आप एकता सप्ताह के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। अब आज की सभा का अंतिम का कार्यक्रम कुरानी किस्से आपकी सेवा में पेश है।
قرآن قصے
दोस्तों, कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम के उदय से पहले अनेकेश्वरवादी भी हज करते थे। दोनों हजों में, यानी वो हज जो इस्लाम के उदय से पहले था और उस हज में जो इस्लाम के उदय के बाद अंजाम दिया जाता है, अंतर यह है कि जो हज इस्लाम के उदय से पहले अनेकेश्वरवादी अंजाम देते थे, उसमें वे अपनी मूर्तियों के प्रति विशेष श्रद्धा व आदर भाव व्यक्त करते थे। जबकि इस्लाम के उदय के बाद जो हज अंजाम दिया जाता है, वो महान ईश्वर का सामीप्य करने के लिए और उसके आदेशों के अनुसार अंजाम दिया जाता है।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पथ प्रदर्शन का सबसे बड़ा नारा, कहो ईश्वर एक है, मुक्ति पा जाओगे। पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण को स्वीकार करने के बजाय अनेकेश्वरवादी उन्हें विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाते थे। कभी उन्हें पागल तो कभी जादूगर कहते थे। पैगंबर इस्लाम काफिरों और अनेकेश्वरवादियों की ओर से दिए जाने वाले समस्त कष्टों को बड़ी शालीनता से बर्दाश्त करते थे। उनके असभ्य व्यवहार का बदला हमेशा सभ्य व्यवहार से देते थे। पैगंबर इस्लाम समस्त काफिरों और अनेकेश्वरवादियों को महान ईश्वर की उपासना की ओर बुलाते थे, परंतु इसके जवाब में वे पैगंबर इस्लाम को पत्थर मारते थे, इस प्रकार से कि पैगंबर इस्लाम को लहू लुहान कर देते थे। उनके शरीर से खून बहने लगता था और पैगंबर इस्लाम की धर्मपत्नी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम के घाव को साफ करते और मरहम पट्टी करते थे।
एक स्थान पर स्वयं पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जितना मुझे कष्ट पहुंचाया गया, उतना किसी भी नबी व पैगंबर को नहीं। दूसरे शब्दों में पैगंबर इस्लाम ने ईश्वरीय धर्म इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जो कठिनाइयां बर्दाश्त व सहन की, वो किसी भी पैगंबर और ईश्वरीय दूत ने नहीं की। यहूदी, अनेकेश्वरवादी, काफिर और समस्त वे लोग ईमान नहीं लाते थे जो अपना हित खतरे में देखते थे। बहुत से लोग जानते थे कि पैगंबर इस्लाम की समस्त बातें सच्ची व सही हैं, इसके बावजूद ईमान नहीं लाते थे, क्योंकि वे पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण को स्वीकार करने में अपने भौतिक हितों को खतरे में देखते थे, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। यानी पैगंबर इस्लाम के निमंत्रण को स्वीकार कर लेने में लोक परलोक का कल्याण निहित था।
यहूदी, काफिर और अनेकेश्वरवादी जब भी पैगंबर इस्लाम से बात करते थे तो बातचीत में हार जाते थे और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के स्थान पर पैगंबर इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। परंतु जब उन सब ने देख लिया कि मजाक उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने पैगंबर इस्लाम को जादूगर और झूठा कहना आरम्भ कर दिया। وہ کہتے تھے کہ پیغمبر کالپنک باتیں کرنے لگے ہیں اور پیغمبر جو یہ کہتے ہیں کہ وہی ارتھات ایشوریہ سندیش ہے تو وہ ڈراؤنے سپنے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پرنتو چونکہ پیغمبر اسلام کی باتیں بہت ہی سندر اور آکرشک تھیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ایشوریہ دھرم اسلام سویکار کر لیا۔
کافروں، انیکشروادیوں اور یہودیوں نے جب دیکھا کہ ان کی یہ چال بیکار ہو گئی ہے تو انہوں نے پیغمبر اسلام کو شاعر کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ ان کی باتیں ودت میں اچھی و آکرشک ہیں لیکن ان کی باتیں ارتھین و کھوکھلی ہیں۔ اسی پرکار پیغمبر اسلام کے دشمن ان کی باتوں کے پربھاؤ کو کم کرنے کے لیے انہیں پاگل کہتے تھے۔ ان سب کاریوں سے پیغمبر اسلام کے دشمنوں و ورودھیوں کا لکش لوگوں کو اسلام سویکار کرنے سے روکنا تھا۔
ایک دن قریش کا ایک جانا مانا ویکتی عبداللہ بن ابی امید مخزومی کچھ لوگوں کے ساتھ کعبے کی اور گیا۔ پیغمبر اسلام کعبے کی اور چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ سب پیغمبر اسلام کو گھیر کر کھڑے ہو گئے اور پیغمبر اسلام پر کٹاکش کرنا آرمبھ کر دیا۔ پیغمبر اسلام نے ان کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا اور کیول مہانیشور کی اپاسنا میں لین رہے اور رکوع و سجدہ کرتے رہے۔ عبداللہ نے جب یہ حالت دیکھی کہ پیغمبر اسلام اس کی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں پر کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں تو اسے بڑا کرودھ آیا۔ اس نے کٹاکش کرتے ہوئے کرودھ اور تیز سور میں کہا کہ ہے محمد، ہم سب تمہیں جانتے ہیں، تمہارے اتیت کو بھی جانتے ہیں، تم بھی ہمارے جیسے ہو، تمہیں ہم پر کوئی شرشتتا نہیں ہے، اپنے حد میں رہ کر بات کرو اور اپنی عزت کا خیال رکھو، زیادہ بات نہ کرو۔ یہ کون سی بات ہے جو تم کرتے ہو اور ہم سب کے بیچ پھوٹ ڈال رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ تم اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگ پرلوک کا سوامی ایسے انسان کو پیغمبر بنائے جو ہم جیسا ہے اور عام لوگوں کی طرح محتاج و ضرورت مند ہے، کھانا کھاتا ہے، کپڑا پہنتا ہے، ویاپار کرتا ہے، اس طرح وہ کس پرکار ہم پر شاسن کر سکتا ہے؟ تمہاری جیون شیلی نہ تو تم سے پہلے والے پیغمبروں جیسی ہے نہ تو بادشاہوں جیسی ہے۔ پرتشٹھت لوگوں کے پاس داس ہیں جو ان کے کام کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور یہ پرتشٹھت لوگ اپنا ہر کام خود نہیں کرتے ہیں۔ جب عبداللہ کی باتیں سماپت ہو گئیں تو وہ چپ چاپ ہو گیا اور پیغمبر اسلام کی پرتکریا کی پرتیکشا کرنے لگا۔
یدبی عبداللہ کی باتوں سے پیغمبر اسلام کو دکھ پہنچا تھا لیکن پیغمبر اسلام نے اسے جواب نہیں دیا اور دھیرے سور میں کہا، ہے پالنہار، تو نے ان باتوں کو سنا تو خود ان سب کا جواب دے۔ یہ وہ موقع تھا جب پوتر قرآن کے سورہ فرقان کی 7-10 تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں مہان ایشور کہہ رہا ہے، ان سب نے کہا کہ یہ پیغمبر کیوں کھاتا ہے، بازار میں چلتا ہے، کیوں اس پر فرشتہ نازل نہیں ہوا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا و پتھ پردرشن کرتا، یا آسمان سے اس کی اور خزانہ بھیج دیا جاتا، یا باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا؟ اور اتیاچاریوں نے کہا کہ تم لوگ جس ویکتی کا انوسرن کرتے ہو وہ ایک جادوگر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دیکھو آپ کے لیے کیسی مثالیں دی، اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اس طرح کی صحیح راستہ کھوجنے کی شکتی بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ ایشور مہان ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے، وہ آپ کو جنت دے سکتا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور تمہیں جنت میں محل دے سکتا ہے۔
بہرحال مہان ایشور نے اپنی عظیم کرپا سے پیغمبر اسلام کو انتم پیغمبر کے روپ میں بھیجا۔ پیغمبر اسلام سدگنوں اور ونمرتا کی پرتیمورتی تھے۔ پیغمبر اسلام سمست مانویہ آبھوشنوں سے سسجت و سوشوبھت تھے۔ پیغمبر اسلام اگر نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور اگر کوئی ان کے پاس جاتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ اسے پیغمبر اسلام سے کوئی کام ہے تو وہ اپنی نماز کو سنکشپ کر دیتے تھے۔
پیغمبر اسلام جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، گولاکار روپ میں بیٹھتے تھے اور اپنے لیے کوئی استھان وشیش نہیں کرتے تھے، یعنی خود پیغمبر اسلام مومنوں اور مسلمانوں کو اتنا سمان دیتے تھے کہ انہی کی طرح بیٹھتے تھے۔ پیغمبر اسلام بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مسلمان کام کریں اور خود پیغمبر اسلام کام نہ کریں۔ پیغمبر اسلام اپنا جوتا خود اپنے ہاتھوں سے سلتے تھے، یہ کاریہ پیغمبر اسلام کی ونمتا کے شکھر کو درشاتا ہے، جبکہ پیغمبر اسلام سمست 124,000 پیغمبروں میں سروشریشٹھ تھے۔
پیغمبر اسلام کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے کبھی بھی کسی کو اپمانت و شرمندہ نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام جب کسی سے ملتے تھے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ پیغمبر اسلام سب سے ادھک اسے ہی چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام داسوں کی طرح زمین پر بیٹھتے اور داسوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، یہ ان کی ونمرتا و مہانتا کا شکھر بندو ہے۔ اس سے ان کا مہان استھان نہ کیول کم نہیں ہوتا تھا بلکہ اور بڑھ جاتا تھا۔ داسوں اور غریبوں کو بھی سمان اور پرتشٹھا کی نظر سے دیکھتے تھے، داسوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایشوریہ دھرم اسلام کے پرچار پرسار کا ایک مکھ کارن پیغمبر اسلام کا نمر، ردو، سوشیل اور شالین سوبھاؤ تھا۔
دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوا۔ کاریکرم کی سماپتی سے پہلے مہان ایشور سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی پیغمبر اسلام کے پد چنوں پر عمل کرنے کا سامرتھ پردان کر۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا پریاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرواتے رہیے۔ تو اگلی سبھا تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.